ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य हरे कृष्णा। तो कल हमने कथा को विराम दिया था। विश्वामित्र मुनि अब वो राम और लक्ष्मण को ले जा रहे हैं अपने आश्रम में, और सरयू के दक्षिण तट पर वो पहुंचे हैं, जहां पर अब राम और लक्ष्मण थके हुए दिख रहे हैं। तो विश्वामित्र मुनि उनके लिए तृण की एक शैया बनाते हैं, और रात्रि में जैसे छोटे बालकों को सुलाया जाता है, उस प्रकार से वो स्वयं भगवान श्री राम को सुला रहे हैं। शास्त्रों की कहानी सुनाकर और ग्रंथों की ये जो कथाएं हैं, ये कथाएं किनके विषय में है? स्वयं भगवान के विषय में। तो भगवान को सुला रहे हैं, भगवान की ही कथा भगवान को ही सुनाकर। और बताया गया है कि भगवान इसलिए सो जाते हैं क्योंकि भगवान जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। हम भी सो जाते हैं, कुछ एक ऐसा ही कारण होता है, क्योंकि जानते हैं कि कथा आगे क्या होने वाली है। परंतु भगवान कोई अपनी कथाओं के ऊपर निर्भर नहीं रहते कि अपनी कथा सुनकर वो पवित्र होंगे। जैसे कि हमने श्री रामचंद्र जी के विषय में कहा है कि वो पवित्रता मंगल के भवन है, वो उनको कोई आवश्यकता नहीं है बाहरी या स्वयं की ही किसी वस्तु से अपने आप को और पवित्र करना। परंतु क्योंकि यहां पर एक मनुष्य का धर्म वो निभा रहे हैं, इसलिए जब विश्वामित्र मुनि शास्त्रों से कथाएं सुनाते हैं राम और लक्ष्मण को, तो राम और लक्ष्मण अब वो सो जाते हैं। और विश्वामित्र मुनि वो पहले उठकर अब वो दर्शन कर रहे हैं, मंगल दर्शन, मंगल दर्शन कर रहे हैं राम और लक्ष्मण को सोता हुआ देख। और जैसे हमने कल चर्चा की कि केवल विश्वामित्र मुनि ही एक मुनि हुए जिन्होंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को सोते हुए देखा, उस छवि उनकी, वो छवि उनकी देखी उन्होंने, और वो मन ही मन श्री कौशल्या का धन्यवाद करते हैं। उनका सौभाग्य सोचकर वो कहते हैं, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नार शार्दुल कर्तव्यम दैवम आहनिखम। वो कहते हैं कौशल्या सुप्रजा राम कि माता कौशल्या कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिनके गर्भ से स्वयं भगवान प्रकट हुए। और वो कहते हैं पूर्व संध्या कि जिस प्रकार से पूर्व संध्या से सूर्योदय होता है, जो पूर्वी दिशा है वो सूर्य की माता कहलाई गई है, तो वहां से सूर्य उदय होता है, पूर्वी गर्भ से सूर्य उदय होता है, उसी प्रकार से ये जो प्रभु श्री राम रूपी सूर्य है इनका उदय हुआ है कौशल्या के गर्भ से। और बहुत ही सुंदर वो उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सूर्य जब उदित होता है तो सबसे पहले सूर्य उदय होने से पहले ही सारा अंधकार दूर हो जाता है, और सूर्य उदय होने के बाद तो अंधकार कहीं रहता नहीं। यदि कोई अपने आप को कमरे में बंद कर अंधेरे में रहना चाहे तो अलग बात है, परंतु वहां पर भी देखा जाता है कि यदि कहीं पर छेद हो उस कमरे में तो सूर्य की रोशनी इतनी शक्तिशाली होती है कि उस छेद में से भी प्रवेश कर थोड़ा सा उजाला कर देगी उस अंधेरी कोठरी में। तो उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर भी अंधेरे में जाना चाहे तो भगवान श्री राम की जो कृपा है सूर्य रूपी कृपा वो किसी न किसी छिद्र से उसके जीवन में आ ही जाएगी उसके अंधेरे जीवन में। और इसलिए विश्वामित्र मुनि यहां पर वो कहते हैं कि ये जो सूर्य है इस संसार का ये केवल जो बाहरी अंधकार है इसे दूर करता है, परंतु प्रभु राम आप जो सूर्य रूपी हैं जब आपका उदय होता है तो जो अंदर का अंधकार है वो आप दूर करते हैं। तो इससे वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को नरों में शेर कह रहे हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो कर्तव्य है जिसके लिए आप अवतरित हुए हैं वो कर्तव्य पूरा करने के लिए आप शेर के समान अब बाहर निकलिए, और ये सारे जो अधर्मी राक्षस हैं इनका वध कीजिए। और फिर वो इस प्रकार से उत्तिष्ठ नार शार्दुल्य उनको कर्तव्य सिखाते हुए जगाते हैं। तो जैसे ही वो दोनों जगते हैं स्नान करने के पश्चात फिर विश्वामित्र मुनि के साथ वो आगे बढ़ते हैं। तो तीनों एक आश्रम में पहुंचते हैं जिसका नाम था स्तनव आश्रम, जो कि अब गंगा के तट पर, अब वो सरयू से गंगा के तट की तरफ पहुंच गए हैं। और ये जो आश्रम स्तनव आश्रम जिसे कहा गया है ये आश्रम गंगा और सरयू ये दोनों का जहां पर संगम होता है वहां पर ये आश्रम था। तो रामचंद्र जी इस आश्रम पर पहुंचते ही विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि ये कौन सा आश्रम है, कहां पर हम पहुंचे हैं। तो विश्वामित्र मुनि वो मुस्कुराते हैं। अब देखिए यदि कोई हमसे कुछ पूछे या हम किसी से कुछ पूछें और वो व्यक्ति बिना जवाब दिए केवल मुस्कुराए तो कैसा लगेगा आपको। तो यहां पर जब प्रभु श्री राम पूछ रहे हैं कि ये क्या आश्रम है, किनका आश्रम है, तो विश्वामित्र मुनि केवल मुस्कुरा रहे हैं। और उसका कारण यह था कि विश्वामित्र मुनि सोच रहे थे कि आप परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान हो, और केवल परमात्मा रूप में नहीं, सबके हृदय रूप में नहीं बल्कि हर एक परमाणु में आप विराजमान हो, तो आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि यह आश्रम किसका है, यह आश्रम का नाम क्या है, यहां पर क्या घटना हुई, परंतु फिर भी आप पूछ रहे हैं। तो इसीलिए विश्वामित्र मुनि मुस्कुरा रहे थे। और फिर विश्वामित्र मुनि, ठीक है आप पूछ रहे हैं तो आपकी सेवा हेतु मैं बताता हूं। तो वो स्तन आश्रम के विषय में बताते हैं कि पूर्व काल में शिवजी यहां पर आए थे तपस्या करने। उनके विवाह से पहले, शिवजी के विवाह से पहले वो यहां पर आए थे तपस्या करते हुए, और जब वो तपस्या कर रहे थे इतनी कठोर तपस्या वो कर रहे थे कि कामदेव को भेजा गया। जब भी कोई महानुभाव तपस्या करते हैं तो इंद्र भयभीत हो जाते हैं थोड़े, तो कामदेव जी को भेजा और इसलिए भेजा तपस्या भंग करने के लिए। तो कामदेव का एक और नाम है मनमथ, कि जो सबके मन को मथते हैं वो है कामदेव। और भगवान कृष्ण का एक नाम है मनमथ मनमथ, कि वो कामदेव जो इस संसार में हम सभी का मन मथ रहे हैं। उनका मन कौन मथता है? भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम। तो ये कामदेव ये आए अपनी पूरी बटालियन के साथ यहां पर शिवजी को भ्रमित करने के लिए। तो वहां पर जब वो पहुंचते हैं और शिवजी का ध्यान भंग करने की चेष्टा करते हैं कामदेव जी। अब देखिए, इस संसार में जब हम लोग भजन में लगते हैं, भगवान के ध्यान में लगते हैं, तो कामदेव जी स्वयं तो आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कामदेव जी अपने एजेंट के एजेंट के एजेंट के एजेंट के एजेंट को यदि भेज दें, और वही करते हैं वो। और कलयुग में तो एजेंटों को भेजने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे कलयुग निवासी तकरीबन कामदेव के एजेंट बन चुके हैं। तो सभी कामदेव के एजेंट बन चुके हैं, तो सभी ने वो, अंग्रेजी में उसे कहते हैं फ्रेंचाइजी, तो कामदेव की फ्रेंचाइजी ले ली है कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है और आपको किसी को भेजने की भी आवश्यकता नहीं है, हम करेंगे जो कुछ करना है। इस कलयुग में जितनी काम वासना फैलानी है हम ही कर देंगे आपके बिहाफ पर। तो सोचिए कि स्वयं कामदेव जहां पर अपने निजी पार्षदों के साथ जिस व्यक्ति का ध्यान भंग करने वो जा रहे हैं, तो सोचिए वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा कि स्वयं कामदेव को चुना गया इन व्यक्ति के लिए। और सोचिए कि ये द्वंद्व, ये मैच कैसा रहा होगा। शिवजी एक तरफ ध्यान में लगे हैं और यहां कामदेव जी अपने पार्षदों के साथ शिवजी का ध्यान भंग करने के लिए। तो जब शिवजी का ध्यान भंग किया, तो देखिए जब हम साधना में लगते हैं और हमारा जब ध्यान भंग होता है, माया या कामदेव ध्यान भंग करते हैं हमारा, तो ध्यान भंग होने के बाद हमारी प्रतिक्रिया क्या रहती है और शिवजी की क्या प्रतिक्रिया थी? हमारी प्रतिक्रिया रहती है, अरे कितने टाइम से ये मैं कर रहा हूं, हरे कृष्णा प्रतीक्षा कर रहा था, कब ये इतना अच्छा मेरे को भौतिक इच्छा आए, काम इच्छा आए। तो जब काम इच्छा होती है, काम वासना अंदर जागृत होती है, तो जब ध्यान भटकता है तो हम उसमें बहुत आनंद लेते हैं और सोचना चाहते हैं। तो हरे कृष्णा तो चलता रहेगा, परंतु ये इच्छा जो अब आ गई है मन में, ये इच्छा छूटने ना पाए, और इसमें गहराई में हम जाते हैं और उस इच्छा को प्रबल बनाते हैं और शक्ति देते हैं। परंतु शिवजी की प्रतिक्रिया क्या थी? जैसे उनका ध्यान भंग हुआ तो उनकी तीसरी आंख खुल गई और कामदेव जी से प्रलोभित होना तो दूर, कामदेव जी को वहां पर ही भस्मित कर दिया। अपनी तीसरी आंख खोली और अग्नि वहां से छोड़कर कामदेव जी को भस्म बना दिया। तो यहां पर विश्वामित्र मुनि बता रहे हैं कि भगवान शिव जी ने कामदेव को इस प्रकार से उनका हनन कर उनका उनको उनका शरीर खत्म कर दिया। तो इसीलिए कामदेव को उसके बाद नाम मिला अनंग। अनंग का अर्थ होता है जिनके कोई अंग दिखाई नहीं देते, बिना अंग के। तो कामदेव जी अब बिना अंग के हो गए। तो इस घटना के पश्चात कामदेव जी को अनंग नाम मिला। और बहुत सुंदर हमारे आचार्य बताते हैं कि शिव जी और प्रभु रामचंद्र जी अब पहुंचे हैं इस जगह पर, जिसे आगे चलकर इसे नाम मिला अंग देश। अंग देश में यह स्तनव आश्रम था। तो क्योंकि कामदेव को अनंग बना दिया शिव जी ने, इसलिए इस देश को अंग देश उसके आगे वो कहने लगे। और रामचंद्र जी यहां पर आए तो रामचंद्र जी अब विश्वामित्र मुनि को लेकर बता रहे हैं कि अब रामचंद्र जी जिन जिन राक्षसों का वध करेंगे तो सबसे पहले हमारे अंदर जो काम इच्छा होती है उसे जब तक हम अनंग नहीं बनाएंगे तब तक इन राक्षसों का वध हम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इसे कैसे समझा जाए कि कामेच्छा जो है उसका एक शरीर भी होता है, उसके अंग भी होते हैं, और उसे अनंग कैसे बनाया जाए। हमारे सबके अंदर अलग अलग प्रकार की इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं होती हैं। तो इच्छा जब तक व्यवहार में नहीं आती तब तक वो इच्छा अनंग रहती है, परंतु वो इच्छा जब हम व्यवहार में ले आते हैं, उसे जब उसे शारीरिक रूप से करते हैं उस इच्छा को, तब वो अनंग नहीं रहती, तब वो एक शरीर धारण कर लेती है इच्छा, तब उसके अंग आ जाते हैं। तो यहां पर शिव जी बता रहे हैं कि सबसे पहले उसे अनंग बनाना है। यदि हमें भौतिक इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले व्यवहार में नहीं लाना है उन्हें। यदि इच्छा आए तो उसे कभी व्यवहार में नहीं लाना। तो ठीक है, यदि हम व्यवहार में भी नहीं लाते तो यहां पर बताया गया है कि वो इच्छा जो है वो फिर मन को पकड़कर रखती है। जैसे कि जो भूत पिशाच होते हैं वो भी अनंग होते हैं, उन्हें भी अनंग कहा गया है भूत पिशाचों को, क्योंकि शरीर नहीं है परंतु इच्छा है भोग करने की। तो ये भूत पिशाच क्या करते हैं, किसी दूसरे के अंग में जाते हैं, किसी दूसरे के शरीर में जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये इच्छा ऐसी है, यदि इसे व्यवहार में नहीं लाया गया तो ये पकड़ेगी किसी और वस्तु को हमारे अस्तित्व के अंदर। ये इच्छा ऐसी होती है, जैसे कि मगध देश के एक राजा थे और उनके राज्य में सभी व्यक्ति बहुत संतुष्ट रहते थे। तो हुआ ऐसा कि एक ऐसा ही यात्री घूमते फिरते उनके राज्य में पहुंचा और इसने देखा कि यहां पर ये सभी संतुष्ट दिखते हैं। तो उसने राजा के सामने एक चुनौती फेंकी कि आप कहते हैं कि आपके राज्य में सभी संतुष्ट हैं, परंतु मैं एक ऐसे जीव को आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा और आप दिखाइए कि वो जीव संतुष्ट है कि नहीं। तो राजा ने पूछा, भाई कौन ऐसा जीव है जो मेरे राज्य में संतुष्ट नहीं है। तो ये यात्री क्या करता है, एक बकरी को लेकर आता है और इस बकरी को सामने खड़ा कर राजा से कहता है, यदि आप इसे संतुष्ट कर सके तो आप मेरे चुनौती को जीत रहे हैं, सफल रहेंगे उस चुनौती को जीत पाने में। तो राजा ने कहा, भाई इतने पूरी प्रजा को मैंने संतुष्ट रखा है, एक बकरी को संतुष्ट करने में क्या। तो बकरी संतुष्ट किससे होती है, कुछ घास मिल जाए, कुछ पत्ते मिल जाए, उससे बकरी संतुष्ट। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा इसे करो संतुष्ट करो। तो बकरी को, अभी राजा ने कहा है बकरी को संतुष्ट करो, तो उसे जो घास खिलाया गया वो साधारण घास नहीं था, राजसी घास। उसे उस प्रकार का घास खिलाया गया तो ये बकरी पूरे दिन भर चर रही थी घास को, और दिन भर घास चरने के पश्चात शाम के समय वो यात्री उस बकरी को लेकर आता है और कहता है कि आपने इसे अब तक संतुष्ट नहीं किया, इतना समय हो गया, पूरा दिन बीत गया। तो राजा ने कहा, मंत्री से पूछा, क्या खिलाया नहीं घास? तो मंत्री कहा पूरे दिन भर घास ही खा रही है। तो राजा ने कहा पूरे दिन भर से खा रही है तो संतुष्ट हो गई होगी अब तक। तो यात्री बकरी को दरबार में ले आता है और कहता है ठीक है आप कहते हैं संतुष्ट हो गई। तो यात्री थोड़ा घास अपने हाथ में रखता है और जैसे ही बकरी के सामने करता है बकरी क्या शुरू कर देती है, खाना। तो यात्री क्या कहता है, कहां संतुष्ट हुई, अभी तक उसे घास चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है इसे और खिलाओ, पूरी रात भर घास खिलाओ। तो रात भर बकरी को घास खिलाया गया। सुबह फिर से वो यात्री बकरी को लेकर आता है और फिर से थोड़ा सा घास दिखाता है, और बकरी की आदत क्या होती है, चाहे जितना भी घास खा ले, जैसे ही मुट्ठी भर घास और सामने लाए तुरंत उसको खाने के लिए बकरी आगे चलती है। तो अब राजा यह असमंजस में पड़ गया कि भाई ये बकरी को कैसे संतुष्ट किया जाए, तो मेरी सारी प्रजा इतनी संतुष्ट है, इसने ठीक चुनौती फेंकी है मेरे ऊपर। तो उस बकरी को दिन रात घास खिलाया गया, परंतु फिर भी जैसे ही घास सामने रखते उसके बकरी आ जाती खाने के लिए। तो अब राजा ने पूरी प्रजा को समाचार भिजवाया कि भाई कोई है इस पूरी प्रजा में जो इस बकरी को संतुष्ट कर पाए। तो एक बूढ़े व्यक्ति, उन्होंने कहा कि मैं चेष्टा करता हूं, परंतु केवल मैं अकेला और बकरी, और कोई नहीं होना चाहिए, और घास ठीक है, घास तो चाहिए उसे संतुष्ट करने के लिए। तो दे दिया गया, तो ये ले गए बकरी को और पहले घास खिलाया, बहुत घास खिलाया बकरी को, और फिर एक पूरा दिन घास खिलाने के बाद वैसे ही घास सामने दिखाया इस व्यक्ति ने बकरी को, तो बकरी भागते भागते आई उस घास को भी खाने। तो इसने एक हाथ में घास रखा, एक हाथ में बैंत रखा मारने के लिए। तो जैसे ही वो घास खाने आती, घास को खाने से पहले वो बैंत मारता बकरी को, तो दूर भाग जाती बकरी, फिर बैंत को छुपा लेता, फिर से घास दिखाता, तो बकरी फिर से आती वो घास खाने, जैसे ही पास में आती फिर से बैंत मारता उसे। तो पूरे दिन उस बकरी के साथ इस व्यक्ति ने यही किया, पहले पूरे दिन घास खिलाया, फिर पूरे दिन घास दिखाया और बैंत खिलाया, घास के बदले बैंत। तो पूरे दिन ये बकरी जैसे ही घास को देखती, अब इसके मन में रजिस्टर हो गया हो कि घास मतलब मार पड़ेगी। तो तीसरे दिन ये व्यक्ति राजा के पास लाता है और कहता है ये बकरी पूरी संतुष्ट हो गई। तो राजा ने अपने मंत्री को कहा लाओ भाई अपना घास लेकर आओ, परीक्षा करते हैं। तो जैसे ही मंत्री और वो उस यात्री को कहा तुम खिलाओ अब घास, तो यात्री घास लेकर आता है, जैसे ही वो बकरी घास को देखती है मैं करके दूर भाग जाती है। तो यात्री बड़ा अचरज हुआ उसे, और राजा को भी, भाई केवल दो दिन में इस व्यक्ति ने कैसे संतुष्ट कर दिया, पूरे हफ्ते भर इसको खिला रहे थे हम इतना घास। तो बताते हैं उसी प्रकार से हमारा मन वो बकरी के समान है, कितना भी इसको संतुष्ट करने की आप कोशिश करो, खिलाते रहो जो कुछ ये मन मांगता है। मन ये पागल मोर कहा गया है, देते रहते हैं इस मन को जो कुछ ये मन मांगता है और हम सोचते हैं कि ये मन अब संतुष्ट हो गया होगा, परंतु जैसे ही एक और विषय वस्तु सामने आती है घास के समान, फिर से बकरी के समान, वो इसे भी थोड़ा मैं चख लूं। ये जो एक इच्छा है ये अंतिम इच्छा है, ये अंतिम इच्छा एक मेरी पूरी हो जाए बस, उसके बाद और कुछ नहीं। तो ये जो बकरी के समान हमारा मन है हर समय घास के पीछे रहता है, तो इसे जैसे शिवजी ने कैसे कामदेव को अनंग बनाया, शुरुआत में हमें भी मन को उसी प्रकार से अनंग बनाना है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कहते हैं कि रोज सुबह इस मन को 100 बार झाड़ू से मारना चाहिए और रात्रि में 100 बार जूते से। जैसे यह व्यक्ति मार रहा था बैत से, तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने कहा कि सुबह और शाम इस मन को केवल मारो झाड़ू से और जूते से। तो ये झाड़ू और जूता क्या है? झाड़ू किस लिए उपयोग में लाते हैं हम? कुछ साफ करने के लिए। तो सुबह इसे झाड़ू से मारने का अर्थ है कि इसे हरिनाम की झाड़ू से साफ करो, उससे मारो इस मन को, और रात्रि में जूते से इस मन को मारने का अर्थ है कि जूता व्यक्ति अपने चरणों पर पहनता है, तो भगवान के चरण कमल उनका चिन्ह है। तो रात्रि में भगवान के चरण कमल पर इस मन को लगाना चाहिए। हालांकि अर्थ यह है कि पूरे दिन भर ये काम चलता रहना चाहिए कि झाड़ू का और जूते का काम पूरे दिन भर भी चलते रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो सोच रहे हैं कि केवल ये 2 बार करने से हमारा मन नियंत्रण में हो जाएगा, परंतु क्योंकि हमारा मन कितनी सारी बकरियां एक साथ यदि आ जाएं तो कितना घास चरते रहेंगी, वैसे एक मन इस कलयुग निवासी का सैकड़ों बकरियों के समान है। तो इसे हर क्षण या तो झाड़ू से या उस जूते से भगवान के चरण कमल की स्मृति और हरिनाम, और कलयुग में तो भगवान ने अपने हरिनाम में सब कुछ दे दिया है, उनका रूप, उनके रूप में सब कुछ आ गया, उनके चरण कमल भी आ गए, उनकी लीलाएं भी आ गई, सब कुछ। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब वो सैन फ्रांसिस्को में थे तो वहां से वो न्यूयॉर्क आ रहे थे और वो गाड़ी में बैठे एयरपोर्ट जाने के लिए, जैसे वो गाड़ी में बैठे तो एक भक्त भागते हुए आए, तो सभी को लगा भाई कोई गड़बड़ हो गई, कोई आपातकालीन स्थिति है, ऐसे भागते हुए आ रहे हैं भक्त। तो भागते हुए आए प्रभुपाद जी, अब जाने वाले थे, गाड़ी में बैठे थे, दरवाजा बंद किया तो ये आकर खिड़की से पूछते हैं, गाड़ी की खिड़की से, कि कृष्ण भावना में प्रगति कैसे करनी चाहिए। हालांकि ये आपातकालीन प्रश्न है, हम सबको इसी आतुरता से ये प्रश्न पूछते रहना चाहिए कि इस कृष्ण भावना में कैसे प्रगति करनी चाहिए। तो सोचिए प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया होगा। प्रभुपाद जी ने केवल एक वाक्य में उत्तर दिया, प्रबल इच्छा, प्रबल इच्छा होनी चाहिए बस। यदि प्रबल इच्छा है तो प्रगति आपके साथ है भक्ति के मार्ग में, और यदि बाकी सब कुछ हम कर लें, यदि प्रबल इच्छा नहीं है प्रगति करने की, तो प्रगति कभी नहीं होगी। चाहे हम कितने भी अच्छे संग में रहें, चाहे हम कितने भी अच्छे स्वास्थ्य में रहें, चाहे हम बाहरी दृष्टिकोण से कितने भी वरिष्ठ वैष्णव बन जाएं, जब तक ये प्रबल इच्छा नहीं है तब तक भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। इसीलिए ये जो अंदर की इच्छा है, क्योंकि ये जो इच्छा का स्वरूप है ये प्रबल है, हर समय इच्छा प्रबल रहती है, या तो माया के लिए रहेगी या कृष्ण के लिए रहेगी। तो या तो हम देखते हैं कि जो इंद्रिय भोगी होते हैं उनके जिंदगी में देखें, उनके जीवन में देखें, तो हर समय वो प्रबल कार्य में लगे रहते हैं, प्रबल इंद्रिय भोग में, क्योंकि पूर्ण प्रकार से माया के वशीभूत हैं। और दूसरी तरफ जो शुद्ध भक्त होते हैं वो प्रबल भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो हमारी स्थिति बीच वाली स्थिति है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा माया से बाहर निकले, परंतु थोड़ी थोड़ा घास यहां का भी खाते रहें और थोड़ा प्रसाद मंदिर का भी। तो क्योंकि हमारे पैर दो नाव में हैं और कई बार दोनों पैर एक नाव में भी कर लेते हैं हम कुछ समय के लिए, और हम जानते हैं कौन सी नाव में करते हैं। कहते हैं कि नाव तो बगल में ही है, मैं कभी भी कूद के आ सकता हूं। जो भक्ति की नाव है उसके विषय में हम कहते हैं कि ये तो इधर ही है, पास ही में है, यदि कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत मैं दोनों पैर इसमें कर लूंगा। परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों पैर इस नाव में, इंद्रिय भोग की नाव में रखने के बाद हमें पता भी नहीं लगता कि वो नाव वहां से चली गई, या हम इस नाव में कितने दूर चले गए, और हम केवल इसी आशा में रहते हैं कि अब तक दिख रही है नाव, हालांकि मैं दूर जा रहा हूं परंतु मुझे दिख तो रही है नाव, मुझे अभी तक पता है कि भगवान कृष्ण भगवान है, और मुझे पता है कि हरे कृष्ण महामंत्र युग धर्म है, परंतु वो दिन दूर नहीं जब वो नाव भी दिखाई नहीं देगी, और ये जो नाव है जिसे हम अपना सहारा मान रहे हैं, तब पता लगेगा कि इस नाव में कितने छिद्र हैं। तो धीरे धीरे ये जो भाव सागर है इसका पानी इस नाव में बढ़ता जाएगा, और फिर क्या स्थिति होगी हमारी, फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो क्योंकि हमारी स्थिति वो स्थिति है कि हम दोनों चखना चाहते हैं, कि मुझे भक्तों का संग भी कभी कभी अच्छा लगता है, पूरा नहीं होना चाहिए, कभी कभी भक्तों का संग अच्छा लगता है, वह जब कीर्तन करते हैं नाचते हैं, प्रसाद तो खैर अच्छा लगता ही है, परंतु उसके साथ साथ जो बाहरी संग है वो भी इतना खराब नहीं है। और मैं काफी प्रगत भक्त हूं, मैं जानता हूं कैसे उसको हैंडल करूं, हम अपने आप को बहुत मैच्योर मान लेते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं कैसे इस बाहरी संग को, दुस्संग को मैं अच्छे से उसको मैं हैंडल कर पाऊंगा। तो इसीलिए कई बार हम उस दुविधा में फंसे हुए रहते हैं, यहां कि वहां। तो वो स्थिति है जैसे रामचंद्र जी रावण का वध कर रहे थे, तो रावण के जो 10 सिर, और रामायण में वर्णन है कि एक एक सिर को काटते प्रभु राम तुरंत नया सर आ जाता वहां पर। और जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे हैं कामदेव या कामिच्छा, काम वासना की, तो रावण प्रतीक था, मूर्तिमान प्रतीक था काम वासना का, और उसके जो ये 10 सर हैं वो भी मूर्तिमान प्रतीक हैं, ये सारी जो कामिच्छा होती है हमारे अंदर उनका। तो हम प्रयास करते हैं कि इसे कम करें, यहां पर एक इच्छा कम हुई, जैसे रावण का एक सर काटा, कुछ समय बाद फिर से वो बाहर आ गया। तो उसी प्रकार से कभी किस दिन इच्छा होती है और कभी नहीं होती। तो जब इच्छा नहीं होती तो हमें लगता है बस शुद्ध भक्त अब थोड़ी दूर है, मैं शुद्ध भक्ति से मैं थोड़ी दूर हूं, परंतु फिर जैसे ही कोई वातावरण या माहौल वर्ल्ड कप शुरू हुआ तब फिर समझ में आया कि अरे अरे दिल्ली बहुत दूर है। तो जैसे प्रभु रामचंद्र जी जब वो एक एक सर काट रहे थे और फिर से वो सर उत्पन्न हो रहा था तो रामचंद्र जी ने सोचा कि एक ही उपाय है, जब तक मैं इसका हृदय नहीं भेदूंगा अपने अस्त्र से तब तक ये मरेगा नहीं। तो उसी प्रकार से हमें भी ये जो काम की इच्छा है, इंद्रिय भोग की जो इच्छा है, इसके हृदय पर बाण छोड़ना है। केवल इसे कोई लेप लगाकर इसे छिपाना नहीं कहीं पर कोने में कि जब जरूरत पड़ेगी तो इसे निकाल लूंगा, बिल्कुल अनंग बनाना है सबसे पहले इसे। और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण से सिखाया, जब 1977 में जब वो इस धरातल को छोड़कर जा रहे थे तो प्रभुपाद जी का अंतिम वाक्य क्या था? प्रभुपाद जी ने कहा कुछ इच्छा नहीं। देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे विश्व में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया अकेले, इतनी संपत्ति उनके अधीन थी, इतने सारे शिष्य, इतना मान सम्मान, परंतु फिर भी अंत समय उन्होंने दिखा दिया कि इस प्रकार से हमें अपना शरीर त्यागना चाहिए, इस संसार की कुछ इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर जो शिवजी ने कामदेव को अनंग बनाया, तो यहां पर विश्वामित्र मुनि, आचार्य बताते हैं कि विश्वामित्र मुनि अब वो एक साधक की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि वो आचार्य बने हैं राम और लक्ष्मण के, परंतु यहां पर वो राम और लक्ष्मण के शिष्य के रूप में, एक साधक उपासक के रूप में अपने आप को दर्शा रहे हैं, उसकी भूमिका निभा रहे हैं विश्वामित्र मुनि। तो सबसे पहले इस तन्व आश्रम से ले जा रहे हैं राम और लक्ष्मण को, यह दिखाने के लिए कि एक साधक को सबसे पहले अपनी इच्छाओं को अनंग बनाना है। और आगे जो ताटक, ये राक्षसी आएगी, मारीच और सुबाहु, ये किन किन के प्रतीक हैं साधक के जीवन में, वो भी आचार्य हमें बताते हैं। तो जैसे ही स्तन आश्रम से वो आगे आते हैं तीनों, तो अब वो एक ऐसे जगह पर पहुंचते हैं जहां पर प्रभु राम देखते हैं कि बड़े बड़े पेड़, विशाल पेड़ जो कभी उन्होंने देखे नहीं थे अपने जीवन में, इतने बड़े बड़े पेड़, और वो इतने गहरे थे, इतने घने थे वो, कि सूर्य की एक किरण नहीं वहां से आ सकती थी उन पेड़ों से गुजरकर। तो पूरा वो जो जंगल था घना और अंधेरा, और वहां पर भयानक खूंखार पशु थे, उनके कराहने की आवाज और चिल्लाने की चिल्लाहट उनको सुन रही थी। तो सभी प्रकार के तामसिक गुण वहां पर दिख रहे थे। तो फिर से प्रभु रामचंद्र जी पूछते हैं कि अब ये कौन सी जगह है? तो विश्वामित्र मुनि इस जगह के विषय में बताते हैं कि इस जगह को एक बार मलद और करुष नाम से ये जगह जानी गई थी। और वो बताते हैं कि क्यों इस जगह को मलद और करुष कहा गया था, कि जब इंद्र ने, भागवत में इसका वर्णन है, इंद्र ने जब वृत्रासुर का वध किया तो इंद्र यहां पर आए और यहां पर उन्होंने गंगा स्नान किया उस पाप से अपने आप को मुक्त करने के लिए। तो क्योंकि इंद्र ने अपने आप को उस मलिनता से शुद्ध किया तो इसीलिए इस जगह का नाम हुआ मलद, जहां पर इंद्र उस मल से मुक्ति प्राप्त किए, उस पाप से। और इंद्र के अंदर जितनी भी इच्छाएं थी, शारीरिक इच्छाएं, इंद्रियों का वेग, तो इंद्रियों के, शरीर के वेग को कहते हैं करुष, एक होता है हमारे मन का वेग, जिसे अनंग बना दिया है, परंतु फिर भी इच्छा वहां पर लटकी रहती है मन के ऊपर। और एक होता है हमारे शरीर का वेग। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कई बार हमारे शरीर का वेग खत्म हो जाता है, यदि भूख लगती है तो ये जो पेट कुछ मांगता है खाने के लिए, तो ये उदर का वेग है, उसे उदर वेग कहते हैं। तो उदर का वेग तो कुछ खाने से वो संतुष्ट हो जाता है, तो जो उदर का वेग है इसे शरीर का वेग या करुष कहते हैं। परंतु इस शरीर के वेग से ज्यादा शक्तिशाली होता है मन का वेग। तो इसीलिए जब उदर का वेग संतुष्ट हो गया, परंतु ये जिह्वा का जो वेग है इसका कनेक्शन मन से होता है। इसीलिए जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे शरीर की, ये ज्ञानेंद्रियों का संपर्क कॉन्टैक्ट मन से होता है डायरेक्ट। और जो कर्मेंद्रियां हैं हमारे शरीर की, उनको थोड़ा सा देने से वो संतुष्ट हो जाती है। तो मन कर्मेंद्रियों को ज्यादा उपयोग में नहीं लाता। जब मन को कुछ अपनाना होता है, अपने आप को संतुष्ट करना होता है, तो वो ज्ञानेंद्रियों को लगाता है, आंखों को, जिह्वा को, त्वचा को, कान को, नासिका को। क्योंकि जैसे अभी हमने उदाहरण लिया कि उदर वेग और जिह्वा वेग, ये दो का, तो जो जिह्वा वेग है वो है एक ज्ञानेंद्रिय, और जो उदर वेग है वो है कर्मेंद्रिय, एक प्रकार के शरीर का वेग। तो खा लिया कुछ, भूख शांत हुई, परंतु जिह्वा शांत नहीं हुई। जिह्वा फिर कहती एक और में कुछ नहीं होगा, कहीं पर साइड में अटक जाएगा, पेट में कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो जिह्वा के वजह से फिर व्यक्ति और खाता है। और क्योंकि जिह्वा ये एक ऐसा वेग है जिह्वा का, कि वो जिह्वा कभी अपने लिए कुछ नहीं रखती, दिखने में निस्वार्थ ये जिह्वा, कुछ भी ऊपर डालो अपने लिए कुछ नहीं रखूंगी मैं, सब कुछ इस उदर के लिए। और वो जिह्वा क्यों नहीं अपने लिए रखती? क्योंकि जब तक उसके अंदर स्वाद रहता है, तब तक वो जिह्वा वो स्वाद का आस्वादन कर लेती है। तो सबसे स्वार्थी होती है जिह्वा। बेचारे उदर को क्या देती है? पूरा पीस पास कर उसके बाद में सारा जो रस उसका निकल गया, यदि कोई रसगुल्ला हो, यदि कोई रसगुल्ला खा रहा है, तो उदर को क्या मिलता है? खाली गुल्ला। पूरा रस का आस्वादन ये जिह्वा कर लेती है, और उसे पूरा पीसने के बाद जब उसका पूरा कचुंबर बन जाए, तब उदर के लिए, फेंको नीचे इसे, तब फिर उदर को जो कुछ जिह्वा का बचा हुआ महाप्रसाद, वो उदर को मिलता है। तो हालांकि ये जो जिह्वा है ये दिखने में बहुत निस्वार्थ दिखती है बहुत स्वार्थी। क्यों स्वार्थी है जिह्वा? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन होता है मन से। तो ये मन जिह्वा को कहता है और करो और खाओ। तो इसीलिए यहां पर इंद्र जब वो शुद्ध हुए गंगा में स्नान करने से, तो मलद और करुष, मन का वेग और शरीर का वेग, दोनों से वो शुद्ध हुए। इसलिए इस जगह का नाम विश्वामित्र मुनि कहते हैं मलद और करुष हुआ। तो यहां पर वो कहते हैं कि ये जगह ऐसी थी क्योंकि इंद्र यहां पर आकर अपने आप को शुद्ध किए थे और इसका नाम इस प्रकार से हुआ उसके पश्चात। तो ये जगह इतनी शुद्ध हो गई थी कि यहां पर दूध और शहद की नदियां बहती थी गंगा के साथ साथ। दूध और शहद की नदियां बहती थी, ये जगह इतनी शुद्ध हो गई थी। और कब तक ये जगह शुद्ध हुई थी? तब तक जब तक यहां पर ताटका नहीं आई, तब वो ताटका का एंट्री करा रहे हैं रामायण में। अब ताटका एंट्री करने वाली है, तब रामचंद्र जी पूछते हैं कि भैया ताटका कौन है और क्या इस ताटका ने यहां पर किया? आपके अनुसार तो यहां पर दूध की और शहद की नदियां बह रही थी, परंतु यहां पर तो सब तमोगुण के लक्षण दिख रहे हैं मुझे। तो फिर वो ताटका के विषय में बताते हैं और वो कहते हैं कि ये जो ताटका है, हालांकि आचार्य कहते हैं कि ताटका जो है वो अविद्या का स्वरूप है, कि यदि हमारा मन भी किसी पाप से मुक्त हो जाए और करुष शरीर का वेग भी यदि शांत हो जाए, परंतु यदि व्यक्ति अविद्या का जीवन जी रहा है तो फिर से मन मलिन हो जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो भगवान का नाम है वो इतना शक्तिशाली है कि एक बार जप करने से, एक बार भगवान का नाम उच्चारण करने से ये जो मन का पूरा मैल है ये धुल जाता है। परंतु भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये मन की धारणा क्या होती है कि शुद्ध तो हो जाता है एक समय, परंतु फिर से ये जो मन है वो अशुद्ध चीजों के पीछे भागना प्रारंभ करता है। तो क्योंकि ये अशुद्ध चीजों को और संग्रह उसका करता रहता है, तो क्या होता है कि फिर वो संघर्ष पाता है वो साधक। हरिनाम जो मन को शुद्ध कर रहा है उसके साथ साथ मन भाग भी रहा है अशुद्ध चीजों का संग्रह करने के लिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि तीन प्रकार के नाम होते हैं। एक होता है भुक्ति नाम। भुक्ति नाम उसे कहते हैं कि जब हम नाम लेते हैं भुक्ति की कामना के लिए। और भुक्ति आप लोग जानते हैं, भक्ति और भुक्ति में बहुत अंतर है, केवल अ और उ में बहुत अंतर हो जाता है। भुक्ति का अर्थ है केवल इंद्रिय भोग में कोई रचा पचा है वो व्यक्ति। तो कई बार हम साधना में वो भुक्ति नाम लेते हैं, नाम तो ले रहे हैं भगवान का परंतु इच्छा है भुक्ति की, तो उस नाम को कहते हैं भुक्ति नाम। तो वो नाम हमें भुक्ति दिलाएगा। नाम में तो इतनी शक्ति है कि हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम दिला सकता है, तो इस संसार की भुक्ति क्यों नहीं दिला सकता? परंतु वो भुक्ति जो है वो हमें भगवान से इतना दूर ले जाएगी कि उसके पश्चात जो इस संसार में रहने का परिणाम होगा वो भुगतना पड़ेगा फिर उस भुक्ति नाम के वजह से। तो सबसे पहला है भुक्ति नाम, और फिर जो व्यक्ति साधक परेशान हो जाता है इंद्रिय भोग से तो वो फिर लगता है मुक्ति नाम में, और बस अब मुक्ति चाहता है, सब प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाए। तो कई बार लोग भक्ति में आते हैं इस धारणा से कि भक्ति में रहेंगे तो बाहर के कष्ट नहीं भुगतने पड़ेंगे। तो वो धारणा से जब हम नाम लेते हैं कि बाहर कष्ट नहीं भुगतना मुझे, तो वो जो नाम है उसे मुक्ति नाम कहते हैं। केवल कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए नाम लिया गया है, परंतु तीसरा जो असली शुद्ध नाम है उसे कहते हैं भक्ति नाम, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए या लिया जाए वो है भक्ति नाम। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि साधक के जीवन में जो संघर्ष पाया जाता है वो भक्ति नाम उसी के अंदर पाया जाता है, कि वो नाम लेता है थोड़ा सा शुद्ध होता है फिर से संग्रह करता है अनर्थों का। जैसे एक बार एक गांव में एक भंगी था, तो भंगी तो आप जानते हैं क्या कार्य होता है भंगी का, कचरा कूड़ा करकट सब हर समय वही उठाते रहो, यहां से वहां उसको उठाकर रखते जाओ। तो ये भंगी एक बार एक गांव से गुजर रहा था और उस गांव में एक पूरा बाजार था अगरबत्तियों का, धूप अगरबत्ती और सुगंधित ये सारी वस्तुओं का बाजार था। तो ये भंगी उस अगरबत्ती के बाजार से जैसे गुजरा तो चारों तरफ अगरबत्ती की ही सुगंध, परंतु ये भंगी हर समय दुर्गंध में रहता तो इसलिए वो सुगंध सहन नहीं कर पा रहा था, उसे वो सुगंध दुर्गंध लग रही थी, तो बेहोश होकर गिर गया। तो कुछ व्यापारियों ने सोचा भाई हमारा अगरबत्ती देखो कितना अच्छा है कि इतनी अच्छी सुगंध है कि ये व्यक्ति सहन भी नहीं कर पाया, या हो सकता है कि इतनी उसको अच्छी लगी ये सुगंध कि वाह भाव विभोर होकर वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। तो कुछ व्यापारी और भी अच्छी सुगंधित अगरबत्ती लेकर आए उसको सुघाने के लिए, फिर से होश में लाने के लिए। तो जब कुछ अगरबत्ती लाकर, धूप लाकर और सुघाए, सोचा कि ये सूंघ कर वो फिर से होश में आ जाएगा, वो तो और बेहोशी में गहरा जाने लगा। तब वहां पर एक और भंगी गुजर रहा था, तो भंगी ने देखा है जाना पहचाना कोई लग रहा है लेटा हुआ नीचे, तो वो आकर देखता है, तो वो देखता है कि ये लोग सब क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा अरे अरे दूर हटो, आपको पता नहीं इसको उठाना, मेरे को पता है कैसे उठाना। तो जाता है अपने कूड़ा कचरे के ढेर से थोड़ा कचरा लेकर आता, और ऐसा कचरा लेकर आता है जो कि सबसे पुराना कचरा और सबसे बदबू मार रहा हो कचरा वो लेकर आता है। मतलब इसे होश में लाने के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली कचरा लगाना पड़ेगा। तो वो जब उसके नाक के सामने रखता है तुरंत सारे होश उसके आ जाते हैं, और दोनों भंगी कहते चलो दूर यहां से जल्दी, नहीं तो असत्संग त्याग गई भंगी आचार। मानो आपस में वो कह रहे होंगे कि ये अगरबत्तियों का बाजार हमारे लिए असत्संग है। तो भक्तिविनोद ठाकुर यही कहते हैं कि हमारा मन भी उस भंगी के समान है, कि चाहे कितना भी अच्छा शुद्ध नाम इसे दिया जाए परंतु फिर भी वो कचरे के पीछे भागता है कि कहां पर कूड़ा है, करकट है, कहां पर कचरा है, कहां पर दुर्गंध है, बदबू है, वहां पर भागता है ये मन। देखिए मंदिर में बैठे रहते हैं हम, सुबह के समय मंदिर में बैठकर जप करें, चारों तरफ केवल भगवान के ही चित्र हैं, सब कुछ भगवान से संबंधित है, परंतु मन जाएगा किसी गटर में, मन सोचेगा किसी इंद्रिय भोग, गटरी इंद्रिय भोग के विषय में। भगवान के सामने इतने सुंदर भगवान का अर्च विग्रह है, इतना सुंदर भगवान का आभूषण है, श्रृंगार है, सामने खड़े हैं, परंतु मन फिर से जाएगा गटर में। तो इसलिए यहां पर हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो मन उस भंगी के समान है, उस बकरी के समान है, इसलिए इसको कभी भी थोड़ी भी ढील नहीं देनी चाहिए इस मन को। जैसे बंदर को जब व्यक्ति मदारी सबसे पहले बंदर को पकड़ता है तो बिल्कुल छोड़ता नहीं वो, यदि थोड़ा सा उस बंदर को ढील दे दे तो बंदर उस शिकारी के ऊपर ही प्रहार करेगा और भाग जाएगा फिर। तो भागवत में इसका उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक शिकारी अपने शिकार को काबू में रखता है, उसी प्रकार से हमें मन को हर समय पकड़कर रखना चाहिए। जैसे ही मन ने कुछ कहा, इसके विषय में थोड़ा सा सोचो एक सेकंड के लिए, तुरंत एक तमाचा लगाना चाहिए, तुरंत उस मन को वहीं पर ही शांत कर देना चाहिए। तो यह ताटका जो है उस अविद्या का स्वरूप है, जिसके कारण मलद और करुष नाम के प्रांत भी दूषित हो जाते हैं अविद्या के कारण। और यह ताटका यहां पर कैसे पहुंची तो रामचंद्र जी पूछते हैं। तो ताटका का इतिहास बताते हैं विश्वामित्र मुनि। वो कहते हैं कि एक यक्ष था जिसका नाम था सुकेतु। सुकेतु नाम का एक यक्ष था और इसने बहुत तपस्या की, और तपस्या का उद्देश्य यही था कि इसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जिसके अंदर 1000 हाथियों का बल हो, ऐसा पुत्र चाहता था ये यक्ष। तो इसने कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, परंतु ब्रह्मा जी जब प्रसन्न होकर आए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई तुम्हारे भाग्य में तो एक पुत्री लिखी है, तो थोड़ा फाइल गलत हो गई, तुम्हारा निशाना थोड़ा चूक गया, तपस्या तो तुमने बहुत की परंतु तुम्हारे भाग्य के अनुसार तो तुम्हें इस समय पुत्री होनी है, पुत्र नहीं। तो क्योंकि तुमने तपस्या कर ली है और तुम्हारा उद्देश्य है कि 1000 हाथी के बल वाला मुझे कोई शिशु चाहिए, तो जो पुत्री होगी उसके अंदर 1000 हाथियों का बल होगा, एलो तथास्तु। तो अब ये यक्ष सोचने लगे, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी भारी पुत्री होने वाली है, 1000 हाथियों का बल वाली पुत्री। तो वो हुई ताटका, हालांकि वो बहुत सुंदर थी, 1000 हाथियों का बल का अर्थ ये नहीं कि हाथी के समान थी वो, हाँ? वो दिखने में बहुत सुंदर ताटका, और अंदर बल था उसका 1000 हाथियों का। आजकल बाहर से लोग हाथी जैसे होते हैं और अंदर से बल केवल चूहे के समान होता है, परंतु ताटका उल्टी थी। ताटका बाहर से एकदम सुंदर शरीर वाली, परंतु अंदर से उसके 1000 हाथियों का बल ताटका। तो फिर अब अपनी बिरादरी में ताटका की भी, उसका भी विवाह हुआ यक्ष बिरादरी में। तो ताटका का विवाह हुआ एक और यक्ष से जिसका नाम था सुंद। तो सुंद और ताटका इनसे उत्पन्न हुए कौन? मारीच। तो मारीच उत्पन्न हुआ ताटका और सुंद से। परंतु ये जो सुंद था ये हर समय ऋषि मुनियों को परेशान किया करता था। तो यहां पर मलद और करुष में, इन प्रांतों में अगस्त्य ऋषि रहते थे। तो ये जो सुंद था ये अगस्त्य ऋषि को बहुत परेशान किया करता था। तब अगस्त्य मुनि कुछ समय तक तो उन्होंने इसको सहन किया, उसके पश्चात फिर उन्होंने श्राप दे दिया और ये सुंद जो है वहीं पर शांत हो गया, भस्म बन गया सुंद। तो जैसे ही भस्म बन गया, अब ताटका और मारीच, पुत्र और उनकी माता, इतने क्रोधित हुए कि अगस्त्य ऋषि के ऊपर प्रहार करने के लिए आगे आए। तो अगस्त्य ऋषि ने इन दोनों को भी श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। तब फिर ताटका वो उस राक्षसी स्वरूप में आई, और ताटका ने फिर, हालांकि वो अगस्त्य मुनि को तो कुछ नहीं कर पाए, परंतु वो जो मलद और करुष प्रांत है पूरा तामसिक बना दिया ये दोनों प्रांतों को। तो यहां पर ताटका अविद्या का स्वरूप और मलद और करुष जो मन वेग और शरीर वेग है, कैसे उनको दूषित करने के लिए अविद्या जो ताटका है वो आती है जीवन में, किसी के साधक के जीवन में। तो अब यहां पर विश्वामित्र मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि इस ताटका का वध करना है आपको। तो जैसे ही विश्वामित्र मुनि अब प्रभु रामचंद्र जी से कहते हैं कि ताटका यहीं पर रहती है, यही उसका साम्राज्य है, और यहां पर ढूंढकर उसका वध करना है, तो तुरंत रामचंद्र जी अपना धनुष निकालते हैं और प्रत्यंचा की गर्जना करते हैं, धनुष की प्रत्यंचा की गर्जना करते हैं, सबसे पहले ताटका जहां कहीं पर भी हो उठाने के लिए। तो रामचंद्र जी की प्रत्यंचा सुनकर ताटका उठती है और जिस दिशा से ये ध्वनि आ रही है उस दिशा में भागते हुए आती है। तो जैसे ही रामचंद्र जी ताटका को देखते हैं तो रामचंद्र जी के अंदर थोड़ी करुणा भावना आती है, अरे स्त्री को मारना पड़ेगा। तो लक्ष्मण को कहते हैं कि इसे मारने की आवश्यकता नहीं, केवल कुछ अंग तोड़ दो, इसके अपंग बना दो तो ये सबक सीख लेगी। परंतु जैसे ही वो ये चर्चा कर रहे थे लक्ष्मण से, तुरंत ताटका ने ऊपर से पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। तब फिर प्रभु रामचंद्र ने सोचा कि भाई ये करुणा के योग्य तो नहीं लगती है स्त्री, जो कुछ सुनाया था। तो फिर प्रभु रामचंद्र जी अपनी एक बाण से उसके कंधे तोड़ देते हैं ताटका के। तो जैसे ही ताटका के कंधे टूटते हैं तो ताटका धराशायी होकर नीचे गिरती है, और जैसे ही ताटका नीचे गिरती है धरती पर, तुरंत लक्ष्मण अपनी तलवार निकालकर क्या करते हैं, जो प्रसिद्ध है करने के लिए, नाक और कान काट देते हैं। तो यहां से उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की थी ताटका से, सबसे पहले ताटका के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि नाक और कान ताटका का काट दिया, फिर भी ताटका मरी नहीं थी। तो ताटका बिलक रही थी और वो गुस्से में प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर प्रहार करने के लिए उठ खड़ी हुई। तब फिर प्रभु रामचंद्र जी ने अपना अस्त्र निकाला, बाण निकाला और शब्द भेदी बाण निकाला, क्योंकि ताटका ने क्या किया, ताटका तुरंत वो समझ गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, विश्वामित्र मुनि किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को लेकर आए हैं इस बार, तो कोई साधारण नहीं है। तो इसलिए ताटका ने क्या किया, वो जब मूर्छित अवस्था में वो अदृश्य हो गई। परंतु प्रभु रामचंद्र जी जानते हैं कि कोई व्यक्ति अदृश्य भी हो जाए तो उसे कैसे पकड़ा जाए, तो शब्द भेदी बाण होता है वो निकाला। तो शब्द भेदी बाण वो उसके जो शब्द हैं वो शब्द को पकड़कर मार देता उस व्यक्ति को। तो शब्द भेदी बाण से ताटका का वध किया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। तो ये सबसे पहली राक्षसी का वध किया है अब प्रभु रामचंद्र जी ने। तो आचार्य बताते हैं कि देखिए इन अवतारों को जब इस संसार में आना होता है तो क्या करना पड़ता है। कृष्ण ने भी सबसे पहले किसका वध किया था, पुतना, वो भी एक राक्षसी स्त्री के रूप में। और यहां पर रामचंद्र जी, तो कृष्ण जब पूतना का वध कर रहे थे वो भी सोच रहे थे, अरे पिछले मेरे अवतार में भी यही करना पड़ा मुझे कि वो ताटका आई स्त्री के रूप में, अब ये पूतना। तो दोनों पूतना और ताटका सबसे पहले राक्षस या राक्षसी का वध किया दोनों राम और कृष्ण ने। और ये दोनों ताटका और पूतना प्रतीक है अविद्या का, कि सबसे पहले यदि हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो अविद्या का नाश करना होगा। इसीलिए रोज हम क्या गाते हैं प्रसाद प्रार्थना में, शरीर अविद्या जाल जोड़ेन्द्रिया ताहे काल, ये जो शरीर है ये अविद्या का जाल है। कोई ऐसा जाल जो किसी को, जाल तो होता है किसी को फांसने के लिए, तो ये जो शरीर जिसके विषय में हम इतना सब कुछ करते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं पहनाते हैं, इतना सब कुछ खर्चा करते हैं, और शास्त्र क्या कहते हैं, अविद्या का जाल है। तो ये ऐसा हुआ कि मानो कोई यदि जाल में फंसा हुआ है और जाल को और अच्छी से संवार रहा है, फंसा हुआ है जाल के अंदर और उस जाल को घिस कर पॉलिश कर रहा है, थोड़ा जाल अच्छा दिखना चाहिए, मैं जब फंसा हुआ अंदर लोग देखे तो कहें कि कितने सुंदर जाल में फंसा है। तो जाल को साफ करता है, उसका देखभाल करता है। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति केवल शरीर के विषय में ही सब कुछ करता रहता है, और ये शरीर अविद्या का जाल है, कोई साधारण जाल नहीं, अविद्या का जाल, तो इस अविद्या के जाल का भरण पोषण कर रहा है वो व्यक्ति। तो यहां पर बताया गया है कि जब प्रभु रामचंद्र जी वो केवल घायल करना चाहते थे ताटका को, और ताटका और खूंखार तरीके से वो अदृश्य हो गई प्रहार करने के लिए। तो कहा गया है कि अविद्या को अधकुचड़े तरीके से नहीं मारना चाहिए, पूर्ण प्रकार से। यदि उसे उस प्रकार से आधा घायल कर छोड़ोगे तो वो अदृश्य होकर वो अविद्या जो है हमारे ऊपर प्रहार करेगी। और अदृश्य होकर प्रहार कैसे करेगी कि यदि पूर्ण प्रकार से अविद्या का नाश नहीं किया तो जो विद्या हम थोड़ी बहुत ले रहे हैं इस कृष्ण भावना आंदोलन में, उस विद्या को लेकर माया प्रहार करेगी। और हमने देखा है कई लोग वो ये जो फिलॉसफी है कृष्ण भावना की फिलॉसफी, इस फिलॉसफी को लेकर इंद्रिय भोग में लगते हैं। और हम बताते हैं कैसे। जैसे सबसे पहले जो भगवत गीता में भगवान ने कहा है हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तो कई लोग इंद्रिय भोग में लगते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं इंद्रिय भोग में लग रहा क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। आप ही लोग कहते हैं ना, तो केवल मेरा शरीर लग रहा है, ये जो इंद्रियां हैं ये केवल इंद्रियां विषय वस्तु में लगी हुई हैं, और क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं इसलिए मैं इंद्रिय भी नहीं हूं। तो क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं इसलिए मैं इंद्रिय भी नहीं हूं, इसलिए ये जो इंद्रिय भोग आप लोग कहते हैं मैं नहीं, वो मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा हर समय शरीर से अलग रहता है, तो मैं इंद्रिय भोग में नहीं लगा। तो उन्होंने देखिए वही विद्या ली और अविद्या में और गिरने के लिए। ये इस प्रकार से कहना हुआ कि कोई यदि जज किसी खूनी को पूछे कि भाई तुमने खून किया है इसका सबूत है, तो व्यक्ति मैंने खून नहीं किया, चाकू ने किया, और चाकू ने भी नहीं किया, मेरे हाथ ने किया। कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा तो क्या उसको कहोगे। तो इसलिए यहां पर जब प्रभु रामचंद्र जी केवल उसे घायल करना चाहते थे तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि नहीं, ये मत समझना कि ये स्त्री रूप में है इसलिए इसके ऊपर तुम करुणा करोगे, बिल्कुल करुणा मत करना। उसी प्रकार से अविद्या जो है, कई बार हम सोचते हैं कि यदि मैं अविद्या में रहूं तो मैं एक प्रकार का मासूम पापी रहूंगा। लोग इस प्रकार से कहते हैं कि एक होता है जो जानबूझ के पाप करता है, एक है जो मासूमियत से पाप में लग जाता है, उसे कोई ज्ञान नहीं कि इसका क्या परिणाम होगा, तो बिना जाने जब पाप हो जाए अनजाने में, तो उसे वो कहते हैं कि वो एक बहुत ही सरल स्त्री के समान है। जैसे रामचंद्र जी करुणा कर रहे थे इस ताटका के ऊपर, तो उसके ऊपर करुणा करनी चाहिए उस अविद्या के ऊपर। परंतु यहां पर विश्वामित्र मुनि कहते नहीं, बिल्कुल करुणा नहीं, पूर्ण प्रकार से इसे मारो, पूर्ण प्रकार से अविद्या का नाश होना चाहिए। इसीलिए यहां पर ये सारे जो प्रांतों से ले जा रहे हैं विश्वामित्र मुनि और ताटकों को सामने ला रहे हैं, ये हमारे आचार्य बताते हैं कि सबसे पहले काम को अनंग करना है, और जब काम अनंग हो जाता है फिर भी अनंग होने के पश्चात भी काम जो है मन को पकड़े रखता है वासना के रूप में, तब फिर यहां पर इस अविद्या का नाश करना है ताटका। तो करुष जो शरीर का वेग है, मन का जो वेग है, और अविद्या, ये तीनों का नाश करना होगा यदि हमें भक्ति में प्रगति करनी है। तो जैसे भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कहते थे, उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि एक शादी की बारात जा रही थी और रास्ता नदी का रास्ता था कि नदी के रास्ते से उन्हें गुजरना था, तो पूरी शादी की बारात अब नदी के तट पर, उन्होंने क्योंकि अब शादी के लिए जा रहे हैं तो पूर्व तैयारी सब कुछ की थी, तो नाव और नाविक दोनों तैयार वहां पर पूरी बारात को पूरे रात्र भर वो नदी से पार कराकर सुबह जहां पर शादी होने वाली थी वहां पर ले जाने के लिए। तो सुबह शादी का मुहूर्त था और पूरी रात्रि ये नाव में आराम से सोते हुए सफर करते और नाविक इन्हें पहुंचाने वाला था सुबह दूसरी तरफ। तो सभी लोग नाव में बैठ गए कि भाई आज की रात तो नाव में हम सोएंगे तो बहुत अच्छी और मधुर नींद आएगी नाव के अंदर। तो ये सोचते हुए सभी तैयारी किए भोजन पानी करने के पश्चात उस नाव में सोने की, और नाविक को पैसे दिए थे भाई तुम पूरी रात भर नाव चलाते रहना और सुबह हमें पहुंचा देना, शादी का मुहूर्त है सुबह। तो नाव पैसे मिले और नाविक ने शुरू किया नाव चलाना, और इतनी तेजी से वो अपने हाथ चला रहा था और इतने पसीने पसीने हो रहा था कि सुबह पहले इनको मुहूर्त के पहले पहुंचाना है। और सुबह जब हुई तो सभी जगे और जगकर देखा क्या उन्होंने, नाव वहीं की वहीं, वहीं की वहीं नाव उसी तट पर खड़ी है, एक इंच भी आगे नहीं गई वो नाव। तो भाई नाविक को पूछते हैं क्या किया रात भर तुमने, तो नाविक कहता अरे पसीने पसीने, अभी तक मेरा पसीने भी सूखे नहीं, पूरी रात भर मैं चला रहा था तो ये हिली क्यों नहीं नाव यहां से। तो वो कहता मुझे क्या पता क्यों नहीं हिली, अरे भाई तुम्हारी नाव है, पैसे दिए तुम्हें, तुम्हें पता नहीं नाव क्यों नहीं हिली। तब फिर खोजबीन की गई, तो खोजबीन की गई तो पता लगा कि जो लंगर था वो निकाला नहीं था, लंगर होता है नीचे नाव को अटकाने के लिए, तो लंगर ही नहीं निकाला उसने। और वो रात भर वो पतवार चला रहा है, सोच रहा है कि आगे नाव जा रही है, इतना मुझे पसीना भी आ रहा है तो नाव जानी चाहिए आगे। तो सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हमारी भक्ति की नाव भी उसी प्रकार से है, जैसे ये शादी के लिए जा रहे थे उसी प्रकार से। शादी का अर्थ क्या होता है, वर वधु का मिलन। उसी प्रकार से जीव और परमात्मा का जो मिलन है वो उस शादी के समान है, और उसका मुहूर्त है जैसे वो शादी का मुहूर्त था, परंतु बीच में क्या है, भवसागर। बीच में ये भवसागर है और नाव दी गई है हमें, परंतु वो जो लंगर है उस नाव का वो है ये काम वासना, ये इच्छा, भौतिक इंद्रिय भोग की इच्छा, उसकी तुलना उस लंगर से की गई है। और कहा गया है कि जितना भारी लंगर होगा उतना अधिक उसे प्रयास करना होगा। तो जितना भारी या गहरे ही हमारी इच्छाएं होंगी इस भौतिक संसार के प्रति, उतना अधिक परिश्रम करना होगा हमें इस नाव को इस भव सागर से तारने के लिए। और कहा गया है कि वो जो पतवार चला रहा था वो नाविक, वो पतवार जो चला रहा था उसकी तुलना की गई है, यदि जब लंगर निकाल दिया जाए तो भी पतवार तो चलाना होगा नाव को उधर ले जाने के लिए, तो वो है हमारी साधना भक्ति, जिससे कि हमारे संचित कर्म और आगामी कर्म ये दोनों नष्ट हो सकते हैं। तो बहुत सुंदर तुलना की गई है, जो लंगर है उसकी तुलना की गई है ताटका से। तो सबसे पहले अविद्या को बाहर निकालना है हमारे जीवन से, उस लंगर को खींचना है। तो जब ताटका का वध होगा, अविद्या का वध होगा, मलद और करुष, मन का वेग और शरीर का वेग, जब ये दोनों नियंत्रण में आ जाएंगे तब जाकर वो नाव चलाना प्रारंभ कर सकेंगे हम, तब जाकर नाव थोड़ी आगे चलेगी। और वो नाव चलाने की जो क्रिया है वो क्रिया से हमारे संचित कर्म पहले के जो, और आगामी कर्म आने वाले कर्म, ये दोनों, ये नाव चलाने की तुलना की गई है हमारे जप से, तो ये दोनों कर्म उसमें नष्ट होंगे। तब जाकर जीव का मिलन होगा, जीव की शादी होगी भगवान से, तब जाकर वो नाव पहुंचेगी और तब जाकर वो शादी के मुहूर्त पर वो योग होगा। तो यहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी वो विश्वामित्र मुनि को एक साधक की तरह लेकर, और विश्वामित्र मुनि स्वयं भी एक साधक की भूमिका निभा रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जैसे एक साधक के जीवन में ये सारी कठिनाइयां आती हैं, अवरोध आते हैं, अविद्या, और अविद्या के एक प्रकार के पुत्र कौन हुए, मलद और करुष, और फिर संचित कर्म और आगामी कर्म। तो ये जो संचित कर्म और आगामी कर्म हैं, इनकी तुलना की गई है मारीच और सुबाहु से, जिसकी जिसका वर्णन अभी आगे आएगा रामायण में। तो जो सुबाहु है उसकी तुलना की गई है संचित कर्म से, पिछले कर्म हमारे जो अवरोध डालते हैं अब भक्ति में, और मारीच की तुलना की गई है आगामी कर्म जो अब आने वाले हैं। तो ये दोनों जब तक इनका विनाश नहीं होता तब तक हम अपना यज्ञ, जैसे विश्वामित्र मुनि उनके यज्ञ में अवरोध ये डाल रहे थे, कौन, तीन, ताटका, सुबाहु और मारीच। तो अविद्या, संचित कर्म, आगामी कर्म, हमारी साधना में भी ये तीन सबसे बड़े अवरोध हैं। तो रामचंद्र जी अब ताटका का वध कर चुके हैं, तो अविद्या का नाश हुआ, अब बाकी रह गए मारीच और सुबाहु, संचित कर्म और आगामी कर्म। और यहां पर विश्वामित्र मुनि जब देखते हैं कि अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अविद्या का नाश कर दिया है, तो साधक के जीवन में जब अविद्या का नाश होता है तो साधक तब शरणागत होता है प्रभु श्री राम के चरणों में। तो अब विश्वामित्र मुनि अपनी शरणागति दिखा रहे हैं, कैसे, जितने भी अस्त्र शस्त्र उनके पास हैं, उन्होंने अर्जित किए, वो सारे अस्त्र शस्त्र अब वो शरणागत दे रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को। तो अविद्या का, ताटका का नाश हुआ, तो यहां पर विश्वामित्र मुनि जो एक साधक की भूमिका निभा रहे हैं, सब कुछ शरणागत कर रहे हैं, और जब सब कुछ शरणागत करेंगे तब जाकर संचित कर्म और आगामी कर्म का विनाश होगा। तो यहां पर देखिए बताया गया है कि क्या क्या शरणागत किया विश्वामित्र मुनि ने, अलग अलग उनके जो अस्त्र शस्त्र, तो जितने भी सब प्रकार के चक्र थे विश्वामित्र मुनि के पास, अलग अलग चक्र, और कौन से चक्र थे, दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, ये चार प्रकार के चक्र थे, वो प्रभु रामचंद्र जी को समर्पित किए विश्वामित्र मुनि ने। गदा, दो प्रकार की गदा थी उनके पास, मोदकी और शिखरी, ये दोनों गदा शरणागत की रामचंद्र जी के चरण कमलों पर। पाश, बड़े बड़े पाश होते हैं, तो धर्म पाश, काल पाश और वरुण पाश, ये तीन प्रकार के पाश थे विश्वामित्र मुनि के पास, वो शरणागत किए। वज्र, दो प्रकार के वज्र थे, सुषकसनी और अर्धसनी, ये दो प्रकार के वज्र ये शरणागत किए। और एक भाला था बहुत विशेष, जिसका नाम था शिव देव तकम, ये भाला शरणागत किया रामचंद्र जी के चरण कमलों पर। और अस्त्र कौन से थे, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, अग्नि अस्त्र, वायवस्त्र, ऐन्द्र अस्त्र, वज्रास्त्र, मानव अस्त्र, मोहन अस्त्र, ये सारे अस्त्र शरणागत किए। देखिए विश्वामित्र मुनि के पास क्या क्या था, और अब तक वो अपने पास रखे हुए थे। तो साधक जितने भी गुण होते हैं वो अपने पास रखता है, भगवान को देता नहीं इतनी जल्दी, परंतु जब अविद्या का नाश होता है, जैसे ताटका का नाश हुआ, तब फिर सब कुछ भगवान के शरण में वो दे देता है, क्योंकि अब उसे असली ज्ञान हुआ है कि ये सब मेरा नहीं है, ये इन्हीं का है। तो हालांकि ये सब कुछ प्रभु रामचंद्र जी का ही थे, ये सारे अस्त्र, और उन्हीं को फिर से वो अर्पित कर रहे थे। तो जब हम हमारा सब कुछ सर्वस्व, सर्वस्व तोमार चरणे सौंपिया, भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं कि जब हम अपना सर्वस्व शरणागत कर देते हैं भगवान के चरण कमलों में, तो भगवान वो सर्वस्व इस्तेमाल करते हैं हमारे संचित कर्म और आगामी कर्म को नाश करने के लिए। भगवान हमारी ही शरणागति, तो अब रामचंद्र जी मारीच और सुभाऊ को कैसे मारेंगे? इन्हीं अस्त्रों से जो विश्वामित्र मुनि दिए हैं। तो ये अस्त्र देने की जो क्रिया हुई शरणागति, तो साधक के जीवन में संचित कर्म आगामी कर्म का नाश होगा जब भगवान वो शरणागति लेंगे, उसका उपयोग कर ये दोनों का वो विनाश करेंगे। तो रामचंद्र जी अब मंत्रोच्चारण करते हैं, ये सारे अस्त्र शस्त्र अपनी मूर्तिमान स्वरूप में आते हैं रामचंद्र जी के सामने हाथ जोड़ते हुए। तो रामचंद्र जी उन्हें स्पर्श करते हैं और फिर कहते हैं कि जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तब तुम आना मेरे पास, तो अब जा सकते हो। तो रामचंद्र जी ने स्पर्श किया केवल इन सारे अस्त्रों को, और आगे फिर ये सारे अस्त्र पाने के बाद, ताटका का वध, अविद्या का वध करने के बाद, अब आगे विश्वामित्र मुनि, उनके यज्ञ में केवल दो अवरोध बाकी रह गए और वो हैं सुबाहु और मारीच, संचित कर्म और आगामी कर्म, और इसकी चर्चा हम करेंगे आगामी दिवस, कल करेंगे इसकी चर्चा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र मुनि के जीवन से संचित कर्म और आगामी कर्म दूर भगाए और मारीच और सुभाहु इनका उद्धार किया। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, शिल प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदी।